एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों में तो रहती है, लेकिन जिसकी असली कहानी शायद हम पूरी तरह जानते नहीं। मुंबई का अंडरवर्ल्ड। और इस सफर में हमारे गाइड हैं एस हुसैन जेदी। उनकी तहकीकात से भरी किताब है बाइकुला टू बैंकॉक।
बिल्कुल। और आज हम इसी किताब के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे।
हाँ, और ये विषय आज भी उतना ही जरूरी लगता है ना?
बिल्कुल। ये सिर्फ गैंगस्टर्स की कहानी नहीं है।
नहीं,
ये समझने की कोशिश है कि कैसे, मतलब एक शहर का लोकल क्राइम वो दुनिया भर के नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है।
सही। और उसका असर फिर हमारे समाज पर, राजनीति पर, कानून व्यवस्था पर, सब पर पड़ता है।
ये कहानी भले ही मुंबई की हो, लेकिन इसमें सबक तो पूरे भारत के लिए हैं, शायद दुनिया के लिए भी। तो किताब पर आएं, उससे पहले शायद लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। एस हुसैन जैदी।
हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जैदी साहब, मतलब उनका नाम तो क्राइम जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम है भारत में।
बहुत बड़ा। भारत के सबसे सम्मानित क्राइम जर्नलिस्ट और लेखकों में से हैं वो।
हाँ, और अनुभव भी कोई कम नहीं, 3 दशक, उससे भी ज्यादा शायद।
बिल्कुल। मुंबई मिरर, फिर एशियन एज, इंडियन एक्सप्रेस, बड़े संस्थानों में काम किया उन्होंने। और सालों तक उन्होंने क्राइम बीट ही संभाली है।
और शायद यही चीज उन्हें थोड़ा अलग बनाती है ना, कि सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं।
सही कहा, उनकी खासियत ही यही है। उनकी पहुंच पुलिस तक तो थी ही, खुफिया एजेंसियों तक भी थी।
अच्छा।
और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के लोगों तक भी उनकी पहुंच रही है।
ये दिलचस्प है, मतलब दोनों तरफ का नजरिया मिलता है।
बिल्कुल, एक 360 डिग्री व्यू कह सकते हैं। उनकी पिछली किताबें भी बहुत मशहूर हुई, जैसे डोंगरी टू दुबई।
हाँ, ब्लैक फ्राइडे भी, जिस पर फिल्म भी बनी थी।
हाँ बिल्कुल। वो मुंबई माफिया पर, मतलब सबसे प्रमाणिक काम माना जाता है।
तो बाइकुला टू बैंकॉक एक तरह से उसकी अगली कड़ी हुई।
हाँ कह सकते हैं, ये दाऊद इब्राहिम के भारत छोड़ने के बाद की कहानी है, उस दौर की जब मुंबई में सत्ता का एक खाली पंसा आ गया था।
जैदी साहब की खूबी ये भी है कि वो सिर्फ दूर से विश्लेषण नहीं करते, वो एक रिपोर्टर की तरह चीजों को देखते हैं।
बिल्कुल।
किरदारों के बीच की वफादारी, धोखेबाजी, इन सब चीजों को वो बारीकी से पकड़ते हैं।
वो पुलिस फाइलों, कोर्ट रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं
और दोनों पक्षों से बात करते हैं।
सही, कानून लागू करने वाले भी और अपराधी भी। इससे एक पूरी तस्वीर उभरती है। तो फिर बाइकुला टू बैंकॉक असल में है किस बारे में? मोटा मोटा सार क्या है इसका?
एक तरह से देखें तो ये मुंबई के लोकल गैंग्स के ग्लोबल ड्रग माफिया बनने की कहानी है।
हाँ।
कैसे, मतलब बाइकुला जैसे इलाकों से अपराध शुरू हुआ और वो बैंकॉक, साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया।
और इसका एक दूसरा पहलू भी है जो शायद उतना ही अहम है।
हाँ बताइए।
कि दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ।
अच्छा।
बल्कि उसमें एक बहुत हिंसक बदलाव आया। सत्ता का खालीपन था, है ना?
हाँ।
तो उसे भरने के लिए छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक, ये नए गैंगस्टर्स उभरे।
खासकर 1993 के जो बॉम्बे बम धमाके हुए।
हाँ, वो तो एक टर्निंग पॉइंट था।
बिल्कुल, उसके बाद तो अंडरवर्ल्ड का चेहरा ही बदल गया।
तो कुल मिलाकर ये किताब मुंबई माफिया के दूसरे बड़े दौर का लेखा जोखा है, मतलब लेट 80s से अर्ली 2000s तक।
हाँ, करीब करीब वही दौर। और ये दिखाती है कि कैसे अपराध का स्वरूप भी बदला। तस्करी तो थी, लेकिन अब जोर रंगदारी पर आ गया। हफ्ता वसूली जिसे कहते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। और साथ ही वो जो गठजोड़ था अपराध, राजनीति और पुलिस के बीच, वो और गहरा हो गया इस दौर में।
किताब हमें मुंबई की गलियों से लेकर दुबई, मलेशिया, बैंकॉक तक ले जाती है।
बिल्कुल।
जहां से गैंगस्टर अपने नेटवर्क चलाते थे। तो ये सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग नहीं रह जाती।
नहीं,
ये समाज शास्त्र भी है, शहर का इतिहास भी है, और वो जो ग्लोबलाइजेशन का स्याह पक्ष है उसका भी अध्ययन है।
चलिए अब कहानी के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जैदी साहब ने इसे कई हिस्सों में बड़े दिलचस्प तरीके से बुना है।
हाँ, कहानी शुरू होती है 80 के दशक के आखिर से। दाऊद दुबई जा चुका है, पर रिमोट कंट्रोल से मुंबई चला रहा है एक तरह से। पर यही एंट्री होती है राजन निकालजे की, उर्फ छोटा राजन, जो पहले दाऊद का ही खास आदमी था,
लेकिन अब उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं।
बिल्कुल। और साथ ही एक और चीज हो रही थी मुंबई में, मिले बंद हो रही थी।
हाँ, मध्य मुंबई की टेक्सटाइल मिले।
हजारों युवा बेरोजगार हो गए थे, उनमें एक गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन थी।
और इसी माहौल से निकले अरुण गवली, अमर नाइक जैसे लोग, नाइक बंधु।
ये बाइकुला, परेल, दादर जैसे इलाकों में अपनी पकड़ बना रहे थे।
फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया, 12 मार्च 1993, बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट।
जैदी बताते हैं कि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड के लिए भी एक वॉटरशेड मोमेंट था।
बिल्कुल, दाऊद और टाइगर मेमन पर इसका इल्जाम लगा, कहा गया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला था ये।
और छोटा राजन जो हिंदू था उसने इसे देश के खिलाफ गद्दारी माना।
हाँ, और यहीं से वो दाऊद से पूरी तरह अलग हो गया। अंडरवर्ल्ड में एक सांप्रदायिक बंटवारा हो गया जो पहले उतना साफ नहीं था।
और राजन ने इस चीज को भुनाया भी खूब, है ना?
बहुत ज्यादा। उसने खुद को देशभक्त डॉन की तरह पेश करना शुरू कर दिया, कहा कि वो धमाकों के जिम्मेदारों को मारेगा।
ये दिखाता है कि अपराध की दुनिया में भी इमेज, नैरेटिव कितना जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल। तो दाऊद के कमजोर पड़ने से मुंबई में 3 बड़ी ताकतें उभरी।
कौन कौन?
एक तो अरुण गवली, धगड़ी चौल से ऑपरेट करता था, डैडी के नाम से मशहूर।
हाँ, उसकी जड़ें लोकल थीं, उसने राजनीति में भी हाथ आजमाया, अखिल भारतीय सेना बनाई।
सही। दूसरा था अमर नाइक, दादर परेल इलाके में उसका दबदबा था, रंगदारी का बेताज बादशाह, पढ़ा लिखा शातिर माना जाता था।
और गवली से उसकी दुश्मनी तो बहुत खतरनाक थी, गैंग वॉर में बदली।
हाँ, बहुत खून खराबा हुआ। और तीसरा पावर सेंटर था छोटा राजन,
जो अब देश के बाहर से ऑपरेट कर रहा था।
बिल्कुल, मलेशिया, बैंकॉक, साउथ ईस्ट एशिया, वहां से अपना नेटवर्क चला रहा था। बॉलीवुड बिल्डरों से रंगदारी वसूलना उसका मेन काम बन गया।
और वो देशभक्त वाली छवि उसे कुछ हद तक बचाती भी रही।
हाँ, कुछ हद तक। इसी दौर में ये गैंग सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय बने।
अच्छा।
हाँ,
कैसे?
जैदी बताते हैं कि कैसे पहले सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी के लिए रास्ते बने हुए थे। उन्हीं रास्तों का, उन्हीं कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल अब ड्रग्स की तस्करी के लिए होने लगा।
मतलब नेटवर्क पहले से था, बस प्रोडक्ट बदल गया।
बिल्कुल। दुबई एक अहम अड्डा बन गया प्लानिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। यहाँ से पाकिस्तानी अफगानी सप्लायर से संपर्क साधा गया।
सोचिए, क्रिमिनल नेटवर्क भी कैसे अपग्रेड होते हैं।
और फिर मुंबई के सिंडिकेट्स की पहुंच हुई उस इलाके तक जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं,
म्यांमार, थाईलैंड, लाओस वाला इलाका जो ड्रग्स के लिए कुख्यात है।
हाँ, वही। बैंकॉक इन ऑपरेशनों का एक तरह से हेडक्वार्टर बन गया। किताब में जिक्र है कि कैसे फर्जी कंपनियां बनाई गई
पैसे लॉन्डर करने के लिए।
हाँ, पैसा लॉन्डर हुआ, हवाला के जरिए ट्रांजैक्शंस हुए और ड्रग्स की खेपें भेजी गईं। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी के ऑपरेशन जैसा लगता है, बस वो डार्क साइड वाला।
लेकिन इस सबके बीच मुंबई में क्या चल रहा था, शहर के अंदर?
शहर में तो खून खराबा चरम पर था। 90 के दशक का मध्य, गैंग वॉर का अखाड़ा बनी हुई थी मुंबई।
आए दिन शूटआउट, हत्याएं, गुलशन कुमार जैसे बड़े नाम भी इसी दौर में मारे गए।
हाँ,
पुलिस पर जाहिर है भारी दबाव था।
और इसी के जवाब में वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली टीमें सामने आईं।
बिल्कुल, प्रदीप शर्मा, विजय सालुस्कर, ये नाम अखबारों की सुर्खियां बने।
हाँ, और जैदी इन एनकाउंटर्स पर एक जरूरी सवाल भी उठाते हैं कि क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाना सही था।
ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। क्या अपराधियों को खत्म करने के लिए पुलिस खुद कानून हाथ में ले सकती है? क्या शॉर्टकट से मिला न्याय असल में न्याय होता है? अमर नाइक जैसे कई बड़े गैंगस्टर इन्हीं एनकाउंटर्स में मारे गए।
हाँ, ये बहस आज भी जारी है।
कहानी का क्लाइमैक्स आता है साल 2000 में बैंकॉक में।
हाँ, छोटा राजन पर जानलेवा हमला दाऊद के सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा शकील के शूटर्स ने किया।
वो पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर अपार्टमेंट में घुसे थे ना?
हाँ, और गोलियों की पोछार कर दी। राजन बुरी तरह जख्मी हुआ, गोलियों से छलनी हो गया,
लेकिन बच निकला।
बच निकला और फिर अस्पताल से बड़े रहस्यमय तरीके से फरार हो गया।
कहा जाता है कि भारतीय एजेंसियों ने मदद की थी।
हाँ, ऐसी अफवाहें थीं। ये घटना दिखाती है कि मुंबई की लड़ाई अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं थी, वो अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर लड़ी जा रही थी। किताब का अंत इस पीढ़ी के गैंगस्टर्स के पतन को दिखाता है।
कैसे?
पुलिस की सख्ती बढ़ी, आपसी फूट पड़ी, धोखेबाजी हुई, गैंग्स कमजोर पड़ गए।
गवली जेल चला गया,
नायक गैंग बिखर गया, राजन सालों तक फरार रहा, लेकिन आखिरकार 2015 में बाली, इंडोनेशिया में पकड़ा गया।
लेकिन सवाल वही रह जाता है।
हाँ, जैदी एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या अंडरवर्ल्ड वाकई खत्म हो गया या उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है?
इस पूरी कहानी से कुछ बड़े सबक या थीम्स उभर कर आते हैं। पहला तो है अपराध का वैश्वीकरण।
हाँ, ये ग्लोबलाइजेशन का वो सियाह पहलू है जिस पर कम बात होती है।
जैसे व्यापार के लिए दुनिया छोटी हुई, वैसे ही अपराधियों के लिए भी।
बिल्कुल, बेहतर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सब का फायदा अपराधियों ने भी उठाया, शायद कानून लागू करने वाली एजेंसियों से भी ज्यादा तेजी से।
और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए पुराने स्मगलिंग रूट ही काम आए, बस सामान बदल गया, सोने की जगह ड्रग्स आ गई।
सही। दूसरा अहम मुद्दा है अंडरवर्ल्ड का सांप्रदायिकरण।
हाँ, 1993 के धमाकों ने इसे धर्म के आधार पर बांट दिया, जो पहले उतना साफ नहीं था। माफिया का धर्म तो सिर्फ पैसा हुआ करता था,
लेकिन उस घटना ने सब बदल दिया। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं जमीनी हकीकत को, यहाँ तक कि अपराध की दुनिया को भी बदल सकती हैं।
और छोटा राजन ने जिस तरह से भुनाया देशभक्ति का चोला ओढ़कर,
हाँ, वो हमें सिखाता है कि कैसे पहचान और धर्म का इस्तेमाल खतरनाक मकसदों के लिए हो सकता है। ये आज के माहौल में भी एक बड़ी चेतावनी है।
तीसरा, वो नेक्सस, अपराध, राजनीति, पुलिस का गठजोड़।
किताब ये बहुत साफ दिखाती है कि ये अंडरवर्ल्ड हवा में नहीं पनपता।
उसे नेताओं का संरक्षण मिलता है, पुलिस में भ्रष्टाचार उसे खाद पानी देता है।
अरुण गवली का चुनाव लड़ना, विधायक बनना, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये हमारे सिस्टम पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है।
चौथा, अपराध के तरीकों का विकास।
हाँ, लगातार बदलते रहना। सोने की तस्करी से शुरू होकर रंगदारी, फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और फिर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट तक।
अपराधी हमेशा कानून से दो कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, ये पुलिस और एजेंसियों के लिए एक लगातार चुनौती है।
और पांचवा, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है आर्थिक बदहाली और अपराध का रिश्ता।
हाँ, मुंबई की बंद होती मिलें, हजारों बेरोजगार युवा।
अंडरवर्ल्ड ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, पैसा दिया, एक झूठी पहचान दी।
यह हमें याद दिलाता है कि अपराध से लड़ने के लिए सिर्फ पुलिस ही काफी नहीं है, हमें सामाजिक और आर्थिक जड़ों को भी देखना होगा। जैदी की किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। सीधे कोट्स शायद ना हो, पर कुछ केंद्रीय विचार बहुत गहरे हैं।
हाँ, जैसे एक विचार ये है कि बाइकिला से बैंकॉक की दूरी मीलों में नहीं बल्कि आपराधिक महत्वाकांक्षा के विकास में मापी जाती है।
क्या खूब कहा है।
बिल्कुल, ये सिर्फ ज्योग्राफिक विस्तार नहीं था,
नहीं,
ये अपराध के इरादों का, उसके तरीकों का बदलना था, एक छोटे गुंडे का ग्लोबल डॉन बनने का सफर।
एक और अहम बात, 1993 के धमाकों ने सिर्फ इमारतों को नहीं तोड़ा बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की आत्मा को भी तोड़ दिया, उसे हमेशा के लिए सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक घटना ने पूरे समीकरण बदल दिए।
अंडरवर्ल्ड के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था वो।
और छोटा राजन के बारे में ये अवलोकन भी गौर करने लायक है। छोटा राजन समझ गया था कि धमाकों के बाद वाले भारत में सबसे ताकतवर हथियार बंदूक नहीं बल्कि कहानी थी। उसने देशभक्त डॉन की कहानी गढ़ी और देश का एक हिस्सा उस पर यकीन करने को तैयार था।
ये नैरेटिव बिल्डिंग की ताकत दिखाता है, कैसे धारणाएं बनाई जाती हैं, भुनाई जाती हैं। आज के पोस्ट ट्रुथ दौर में ये और भी ज्यादा प्रासंगिक लगता है।
बिल्कुल।
और अंत में एक चेतावनी भी है किताब में, जो आज भी उतनी ही सच है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ जंग कोई एक देश अकेला नहीं जीत सकता।
सही।
इसके लिए उसी स्तर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है जो अपराधियों ने आपस में हासिल कर लिया है।
अपराधी ग्लोबल हो गए हैं, लेकिन क्या हमारी कानून व्यवस्था, हमारा सहयोग उतना ग्लोबल हो पाया है? ये सवाल आज ड्रग्स से लेकर साइबर क्राइम और आतंकवाद तक हर चीज पर लागू होता है। सुनने में ये सब शायद मुंबई के गैंगस्टर्स की कहानी लगे, हमसे बहुत दूर, लेकिन अगर सोचें तो इसके सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखते हैं।
बिल्कुल। सबसे पहले तो ये हमें समाज और अपराध के रिश्ते को समझने में मदद करता है।
हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, अवसरों की कमी, कैसे ये चीजें युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल सकती हैं, ये हम अपने आसपास भी देखते हैं।
दूसरा सबक है मीडिया लिटरेसी का, या कहें मीडिया को समझने की कला।
वो छोटा राजन की देशभक्त डॉन वाली छवि वाला उदाहरण।
हाँ, वो हमें सिखाता है कि आज भी जो खबरें हम देखते हैं या सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, उन पर आंख मूंग कर यकीन ना करें,
थोड़ा रुक कर सोचें।
हाँ, कि ये कहानी कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, क्या हमें पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है, सवाल पूछना जरूरी है नहीं कि नहीं।
और चौथा, कानून व्यवस्था और शासन पर हमारी अपनी सोच,
वो एनकाउंटर वाली बहस।
हाँ, क्या शॉर्टकट सही है, क्या लक्ष्य हासिल करने के लिए साधन कोई भी हो चलेगा।
ये हमें पुलिस सुधार के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, सिस्टम की जवाबदेही, मानवाधिकारों का महत्व, इन सब पर।
न्याय सिर्फ सजा देना नहीं है, न्याय प्रक्रिया में भी होना चाहिए। मेरे लिए इस पूरी चर्चा में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कैसे मुंबई का एक लोकल क्राइम इतनी जल्दी, इतनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बन गया। और कैसे ग्लोबलाइजेशन ने इसे एक तरह से ईंधन दिया।
ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है, अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से। और मेरे लिए सबसे अहम सबक यह है कि अपराध जगत समाज से अलग नहीं है, वो उसी का एक आईना है।
हाँ, ये बात सही है।
ये हमारी राजनीति की, हमारी पुलिसिंग की, हमारे समाज की कमजोरियों का ही एक प्रतिबिंब है। जब तक हम उन कमजोरियों को दूर नहीं करते, तब तक नए चेहरे आते रहेंगे, नए तरीके आते रहेंगे।
तो जैदी साहब की किताब सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि मुंबई शहर की और शायद हमारे पूरे सिस्टम की कहानी है।
बिल्कुल।
जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या आज भी हमारे शहरों में अपराध, राजनीति और व्यवस्था के बीच वही पुराना गठजोड़ मौजूद है, बस शायद उसका रूप बदल गया है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।